So, brother, God bless you all in the name of Lord Jesus Christ. I ask brother Samir if he can pray.
आइए हम दुआ करते हैं.
हालेलुया.
यीशु मैं हमारे जिंदा हमारे बाप, मैं दिल दर दिल के गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है. खुदावंद हम तेरे हजूर में आए हैं, तेरे हजूर में छुपते हैं, तेरे हजूर में इस वक्त अपना वक्त गुजारने के लिए हम सब इकट्ठे हैं. तो खुदावंद जितनी देर तक हम तेरे हजूर में छुपते हैं तो हमारे साथ होना, हमारी मदद करना. तेरा पाकरू जो हम सबका अच्छा मददगार है हमारी मदद करे. अरे खुदावंद ये जो भी इंटरनेट का मसले हैं, कम सिग्नल है, खुदावंद इन सबको तेरे हैंड परिचय करते हैं. और खुदावंद तू अपने इलाही कुदरत के साथ इस सारी कमियों पर कमजोरियों के ऊपर काबू कर. और खुदावंद ये सब तेरे नाम के वसीले से खुदावंद दुस्तगी के साथ चलने वाले हो सके. और खुदावंद इस मीटिंग के दौरान कोई भी खलल ना पैदा हो सके. और खुदावंद हम सब जिस वक्त तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए इकट्ठे हैं तो खुदावंद तू हमारे साथ होना, मदद करना. खास तौर पर ब्रदर ब्रूनो के लिए दुआ करते हैं जो तेरा बंदा इस बड़े बोझ के साथ है कि वो तेरे पाक कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाए. तो तेरा पाक रू जो हम सबका अच्छा मददगार है, ब्रदर ब्रूनो की मदद करे. और खुदावंद हमारी भी मदद करे ताकि हम इस कलाम को सीखने वाले हो सके. खुदावंद तो हम सबके खानदानों को बड़ी बरकत दे. हमारे साथ होना इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा रहनुमा हो. खुदावंद हम सिर्फ तुझे अपना मसीहा कबूल करें. खुदावंद तेरे ही लिए अपनी जिंदगियों को अलग और मुनफरद करें. खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में से नजर आ, हमारे साथ होना, मदद करना, रहनुमाई कर. मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
हालेलुया. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. Hallowed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallowed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. I hope you are all fine and all thirsty and hunger for the word of God. When we have eaten for our belly, we realize that we need something, and this is the soul, the food for the soul.
और जैसे हम अपने पेट के लिए खाना खाते हैं, इसी तरह ये खाना जो है ये हमारी रूह के लिए है.
Yes, we know that it's not possible to live without the spiritual food.
और हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है कि हम रूहानी खुराक के बगैर रह सकें.
We have been reflecting, meditating on the restoration of all things.
हम जो है तमाम चीजों की बहाली के ऊपर सोचो विचार कर रहे हैं.
I have begun to read chapter 10 of Nehemiah today.
और मैंने आज जो है नहमिया का 10वां बाब जो है उसको पढ़ना शुरू किया.
And then I have seen the name of a king there.
और फिर वहां पर मुझे वहां जो बादशाह है उसका नाम पता चला.
And I have meditated more on the book of 2 Chronicles.
और इसके साथ मैंने दूसरा तबरेख के ऊपर गौर और खोज किया.
First we are going to read chapter 10 of Nehemiah.
पहले हम जो है वो नहमिया का 10वां बाब पढ़ेंगे.
So brother, you can take Nehemiah 10.
हम निकालेंगे नहमिया.
You can read the first verse. I will read it with you.
नहमिया 10 बाब उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे. और वो जिन्होंने मोहर लगाई ये हैं, नहमिया बिन हकलिया हाकिम और सदकिया. वर्स 2 सराया उजरिया
यर्मिया. ब्रदर यू कैन आई मे बी आई थिंक दैट वी कैन रीड द 9:38 बिकॉज़ इन माय बाइबल समटाइम्स इज वर्स 38 8, sometimes it's 10:1. So I will read Nehemiah 9:38, maybe for you, is written, because of all this, we make a firm covenant in writing on the sealed document are the names of our princes, our Levites, and our priests.
नहमिया 9 बाब उसकी 38 आयत में मरकूम है, इन सब बातों के बाद सबब से हम सच्चा अहद करते और लिख भी देते हैं और हमारे उमरा और हमारे लावी और हमारे काहिन उस पर मोहर करते हैं.
And we saw last time a pact, a covenant. We promise something to God and God make promises.
और हमने पिछली दफा देखा था कि वादों का असर कुछ ऐसे वादे थे जो खुदा हमसे करता है और जो हम खुदा के साथ करते हैं.
हालेलुया, आमीन. Verse 29.
और उसकी 29 आयत.
I can read with you the rest of the people. So sometimes it's 28 and 29. It depends on the Bible. Here in my English version, 20 and 29. The rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the temple servants, and all who have separated themselves from the peoples of the land to the law of God, their wives, their sons, their daughters, and all who have knowledge and understanding, join with their brothers, their nobles, and enter into a curse and oath to walk in God's law that was given by Moses, the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord, our Lord, and his rules and his statutes. Amen.
Verse 28. और बाकी लोग और काहिन और लावी और दरबान और गाने वाले और नतीनीम और सब जो खुदा की शरीयत के खातर और मुल्कों के कोमों से अलग हो गए थे और उनकी बीवी और उनके बेटे और बेटियां गर्ज जिनमें समझ और अकल थी वो सब के सब अपने भाई अमीरों के साथ मिलकर लानत और किस्म में शामिल हो गए ताकि खुदा की शरीयत पर जो बंदा खुदा मूसा के मार्फत मिली चले और यहूदा हमारे यहोवा हमारे खुदावन के सब हाकमों और फरमानों और आयन को माने और उन पर अमल करे. आमीन.
हालेलुया. You must always, you remember, the brother Frank very often he said, you must have the key words when you read the Bible.
और आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, भाई फ्रैंक ये बात कहते हैं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके पास चंद जो की वर्ड्स हैं वो लाजमी मौजूद होने चाहिए.
Here we speak of separation.
यहाँ पर हम तैयारी की बात कर रहे हैं.
The message of the hour that God has given to Brother Branham separates us from the denomination.
और जो पैगाम है जो खुदा के खादम ने हमें दिया वो ये है कि हम जो दूसरे मजाहिब हैं उनसे अलग होकर रहें.
In reality, to be precise, it separates us from the false doctrines.
और हकीकत में इसकी हकीकत ये है कि ये हमें जो गलत तालीमें हैं उनसे अलग रखता है.
And then you have the verse which 30, maybe it's 29 here. Join with their brothers, their nobles, in my Bible in French, the brothers the most considered or the most respected. In my Bible.
और लिखा है 29वीं आयत के अंदर कि वो सब के सब अपने भाइयों मीरों के साथ मिलकर लानत और कसम में शामिल हुए.
Again, it shows us always elders must be respected.
और फिर ये बात हमें दिखाती है, बताती है कि जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा काबिल इज्जत होते हैं.
And Brother Frank has written the letter in the 70s and also in the 80s to that their brothers, elders who are not respected, those who do not respect the eldership of the brothers, they are in a bad position before God. They are sinning. They make a sin.
और भाई फ्रैंक की बात कहते हैं उन्होंने 70 1970 के अंदर ये बात कही कि जो बुजुर्ग हैं या जो एल्डर्स होते हैं वो काबिल एहतराम होते हैं, और जिनकी इज्जत नहीं होती इसका मतलब होता है कि वो फिर अपनी जिंदगियां गुनाह के अंदर गुजार रहे हैं.
Maybe you remember, I read it, and the Brother Frank also said, also write, you young man, be careful. A young man who despise even elders or his mother or his brother, or do not want to obey, he cuts himself, or is it a woman or girl, she cuts herself from the spirit. So we must always obey to God.
और भाई ने उसको अलग कर दिया, और उसको एक शख्स था, नौजवान था, उसको भाई ने बोला कि तुम अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, एहतराम करो. और उसके अंदर जो रूह है वो गलत किस्म के काम कर रही थी, तो वो भाई ने उसको अलग कर दिया और उसको हुक्म भी दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने बुजुर्गों के साथ काबिल एहतराम या इज्जत के साथ पेश आओ.
एंड हियर यू सी द फॉलोइंग वर्स. We will not give our daughters to the peoples of the land or take their daughters to our sons.
और 30वीं आयत के अंदर लिखा है 30, और हम अपनी बेटियां मुल्क के बाशिंदों को ना दें और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें.
As always, the truth in the Old Testament is the truth in the New Testament.
और जो सच्चाई पुराने अहदनामा के अंदर है वही सच्चाई नए अहदनामा के अंदर भी है.
In the Old Testament we must not make children with the world, with the people of the heathen, the pagan. In the New Testament the church must not bring forth illegitimate children, bastard children. They must be children of God.
जिस तरह से पुराने अहदनामा के अंदर है कि तुमने दूसरे गैर अकवाम में से औरतों या बेटियों को नहीं देना, इसी तरह नए अहदनामा के अंदर भी है कि जो आप इसको कह सकते हैं कि जो बुरी पैदाइश के लोग होते हैं उनको नहीं देना अपने साथ.
I know that nowadays it is an insult to say, oh, this boy or this girl is born like an illegitimate child. We don't know his father, we don't know whatever. But here the point is, the church is a woman. We must not try to make children with denominations. We must go out first and then we preach.
और आज के जमाने में ये बात कहना बहुत ही बुरी बात समझा जाता है कि एक बच्चा ऐसा है जिसको ना ही अपने माँ का पता है और ना ही अपने बाप का पता है, और वो बच्चा उसकी माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं होती. इसी तरह हम जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है, और हमने इस तरह के बच्चे और बच्चियां नहीं बनानी रूहानी तौर पर जिनको अपने बाप या माँ का ना पता हो.
So you remember the question that I asked several times, why a woman is compared to a church, is because she received the seed of a man, and the church received the seed of Jesus Christ to bring forth children of God.
और हमेशा मैंने काफी दफा ये सवाल पूछा कि क्यों जो है वो औरत को दुल्हन कहा गया है, क्योंकि औरत जो है वो बीज लेती है और वो आगे औलाद पैदा करती है. इसी तरह जो कलीसिया है उसको दुल्हन कहा गया है ताकि वो मसीह के लिए रूहानी परवरिश या रूहानी लोगों को पैदा कर सके.
In Ephesians 4:5 is well written, there's one church.
और इसी 4:5 के अंदर लिखा हुआ है कि एक कलीसिया है,
one spirit,
एक रूह है,
one God,
एक खुदा है,
no trinity,
और इसमें कोई तीन लोग नहीं है.
And also there was another problem. If you see the following is written, and if the peoples of the land brings in goods or any grain on the Sabbath day to sell, we will not buy from them on the Sabbath or on the holy day, and we will forego the crops of the seventh year and the exaction of every debt.
और 31वीं आयत के अंदर लिखा है 31, और अगर मुल्क के लोग सब्बत के दिन कुछ माल या खाने की चीज बेचने को लाए तो हम सब्बत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मोल ना लें, और सातवां साल हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दें.
So again, the Old Testament speak of rest, so we must respect the Sabbath. In the New Testament, we have already this sermon in our sight. We must respect the rest in Jesus Christ.
और पुराना ऐतनामा वो सब्बत की बात करता है तो हमने सब्बत का एहतराम करना है और नया ऐतनामा जो है वो आराम की बात करता है तो हमने उसका भी देखना है कि वो कौन सा आराम है.
And you know the rest, let's say very quickly, it is the rest on the work of the cross. We rest, we trust 100% on the sacrifice of Jesus Christ.
और हम किस आराम की बात करते हैं? हम उस आराम की बात करते हैं जो दामद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान देकर हमारे लिए मुकर्रर किया.
So the Old Testament for people of Israel, they have the rest, physical rest, so they can sleep or they can. But in the New Testament, it's not that we must make works to be saved. No, we just rest once for all on the blood of Jesus Christ.
पुराने ऐतनामा में हम देखते हैं कि हम जिस्मानी कामों से आराम की बात करते हैं जो वो आराम करते थे लेकिन नए ऐतनामा के अंदर वो तमाम काम बुरे जो हम करते हैं उनसे हमने इज्तनाब करके उसको हमने आराम का नाम देना है.
Verse 33, we speak of the grain offering. You can read it.
और 33वीं आयत से लिखा है यानी सब्तों और नए चांदों की नजर की रोटी और दायमी नजर की कुर्बानी और दायमी सोखतनी कुर्बानी के लिए और मुकर्रा ईदों और मुकद्दस चीजों और खता की कुर्बानी के लिए के इसराइल के वास्ते कफारा हो और अपने खुदा के घर के सब कामों के लिए.
And is written clearly atonement for Israel and for all of the work of the house of our God.
और ये साफ लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ जो है वो इसराइल के वास्ते है और खुदा के घर के सब कामों के लिए है.
You see, it's written atonement for Israel, and in the New Testament, it is atonement for the people of God. So God has one people, elect people. The elect nation is Israel, and there is an elect people who believe in Jesus Christ. The elect is the bride of Jesus Christ. In all the nations, the elect.
और आप देखें कि इस पुराने ऐतनामा में लिखा हुआ है कि वो कफारा जो है वो इसराइल के वास्ते है, इसराइल के लिए है और नए ऐतनामा के अंदर जो कफारा है वो खुदा के चुने हुए लोगों के लिए है, यानी कि वो लोग जिनको खुदा ने चुना हुआ है.
We have the verse 35. We obligate ourselves to bring the first fruits. Again, in the Old Testament is carnal. In the New Testament, we think of one thing. We must give to God the premises of our goods. So we must pay the tithes, the gifts, you know. This is also in the New Testament.
और 35वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है और साल ब साल अपनी जमीन के फल पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंद के घर में लाए. जैसे हम देखते हैं कि पुराने ऐतनामा में भी हम अपने जो तोहफे थे वो खुदावंद के लिए देते हैं और नए ऐतनामा के अंदर भी हमने अपनी दया जिक्की जो है वो खुदावंद के लिए देनी है.
So we have already spoken about the tithes and the gifts. You can go on in our internet and you find on my site the teachings on the tithes. It belongs to God. We must not steal the money of God. One tenth of our income.
और हम जो है वो दया जिक्की की हमने पहले से भी हमने इसके ऊपर जो है वो कलाम जो है वो सुनाया हुआ है और आप मेरी साइट के ऊपर जाए वहां पर आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं कि जो हमारी इनकम होती है उसका दसवां हिस्सा हम खुदावंद के हजूर में देते हैं.
एंड यू रीड इन द ओल्ड टेस्टामेंट इट वाज टू यू नो फॉर द लेवाइट्स बिकॉज़ लेवाइट्स हैज नो वर्क एंड फॉर द न्यू टेस्टामेंट इट मींस फॉर द वर्क ऑफ गॉड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैसेज ऑफ द आवर.
और आप पुराने ऐतनामा के अंदर पढ़ सकते हैं कि वो जो दसवां हिस्सा था वो लावियों के लिए था क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और वो सिर्फ खुदा की खिदमत करते थे. और इसी तरह नए ऐतनामा के अंदर जो दया जिक्की है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पैगाम की मुंतकली के लिए है या खुदा के पैगाम के लिए है.
एंड सो यू सी वी कैन रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर 10 Just see carnally, the carnal things in the chapter 10.
और आप दसवें बाब के अंदर तमाम जो जिस्मानी लिहाज से काम हैं जो बताए गए हैं वो आप देख सकते हैं.
So we can read 38-39. And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive the tithes. And the Levites shall bring up the tithes of the tithes to the house of our God, to the chambers of the storehouse. 39, you have it here, sometimes it's verse 40. And the people of Israel and the sons of Levi shall bring the contribution of grain, wine, and oil to the chambers, where the vessels of the sanctuary are, as well as the priests who minister, and the gatekeepers and the singers. And so the last verse, we will not neglect the house of our God.
33वीं आयत में लिखा है और जब लावी दैज की लाएं तो कोई काहिन जो हारून की रात से और लावियों के साथ हो और लावी दैजियों का दसवां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल को कोठरियों में लाए. 39 क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अनाज और मैं और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठरियों में लाया करेंगे जहां मुकद्दस के जरूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे.
हालेलुया. So, always I repeat the same, do not mix the bricks, the buildings, with the church.
और हमेशा मैं इस बात को दोहराता हूँ कि आप जो ईंटें हैं या दूसरी जो इमारतें हैं इनको कलीसिया के साथ मत जोड़ें.
In the New Testament, we are the people of God, we are the church, not the bricks.
नए अहदनामा के अंदर हम खुदा के लोग हैं, हम कलीसिया हैं या हम चर्च हैं, ना कि ईंटे या पत्थर.
And so we must find this balance between two things. I will explain you.
तो हमने इसका जो मुवाजना करना है वो दो चीजों के साथ करना है. मैं आपको बताता हूँ.
So in one side we read that we must not forget, we must not neglect the house of God, the church.
एक तरफ हमने देखना है कि हमने खुदा के घर को नहीं भूलना.
But also is written that the children of God are led by the Holy Spirit.
लेकिन इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि खुदा के बेटे और बेटियां वो पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं.
And I think that this is what happens the most in the life of all the Christians.
और मेरे ख्याल में ये जो है ज्यादातर मसीहियों की जिंदगियों के साथ होता है ऐसा.
And you have each one of you who are in the church, you have the experience of this.
और आप में से सब जो चर्च जाते हैं आपका ये तजुर्बा भी हुआ होगा.
We listen something, for example, of Brother Branham, the prophet, or we read something of Brother Frank, or we read something of the Bible, and it enters in us, in our brain and our heart.
मिसाल के तौर पर हम भाई ब्रैनम का पैगाम सुनते हैं या भाई फ्रैंक का सुनते हैं या बाइबल में से हम कोई हवाला देख रहे होते हैं या कोई भी चीज हम सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर या हमारे दिल के अंदर दाखिल होता है.
एंड सो द ह्यूमन रिएक्शन, वी वांट टू डू समथिंग, ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू, बिकॉज़ वी रीड समथिंग, सो वी वांट टू डू द थिंग्स दैट वी हैव रेड. इट्स नॉर्मल.
और एक इंसान का क्या रद्द अमल होता है कि हम कहते हैं कि हाँ ठीक है हमने पढ़ा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे या कुछ करते हैं.
But always we must be led by the Holy Spirit.
लेकिन हमें हमेशा पाक रूह की रहनुमाई में चलना है.
And we cannot enter in all examples, but you understand what I mean.
और हमने तमाम मिसालों के अंदर नहीं जाना बल्कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूं.
बिकॉज वी कैन डिस्ट्रॉय बाय लेट्स से स्पिरिट व्हिच इज इन अस हु पुशेस अस टू डू थिंग्स बट आउटसाइड द टाइम ऑफ गॉड.
और क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि रूह कोई ऐसी रूह होती है जो हमें कुछ काम करने के लिए कह रही होती है लेकिन वो काम हम पढ़ते हैं लेकिन अभी उस काम का वक्त नहीं आया हुआ था.
A simple example, William Branham, the prophet of our time, believed that he could bring the message of the hour to the people of Israel. But God said to him, it is not the time.
और जैसे विलियम ब्रैनम जो थे वो शायद इस बात को समझ रहे थे कि इस बहाली के पैगाम को मैं इसराइल तक पहुंचाऊंगा लेकिन खुदावंद ने उनसे कहा कि अभी उनके लिए ये पैगाम नहीं है.
And the same for a marriage. When it's not the time, it's not the time. We must wait the time of God.
और ऐसा ही जो है वो शादी के लिए है और अभी वक्त जो है वो नहीं आया.
Now, as we are speaking of a restoration, we are still speaking of restoration, there is something that I have written in my Bible, and I think it's Brother Frank who has written this. 2 Chronicles 31.
और जब हम बहाली की बात करते हैं तो अभी हम देखते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है दूसरा तवारीख.
Where we speak of Ezekias who reorganized or restored the things.
जहां पर हम हिजकिया के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उन सारी चीजों को बहाल किया और दोबारा से उन सारी चीजों को तरतीब के अंदर लेकर आया.
But before speaking of him, we can go in two chronicles.
लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे दूसरा तवारीख.
And of course you have the whole list of kings of Judah and kings of Israel. Two groups.
और आपको यहाँ पर तमाम बादशाहों की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी यहूदा की और दूसरे जो बादशाह था उनकी भी.
Something very, very important to read.
एक चीज जो बहुत अहम है पढ़ने के लिए.
Some kings did good things, things which are right in the eyes of the eternal God.
चंद बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अच्छे काम किए जो हमारे खुदावंद की नजर में मकबूल हुए.
Some kings did very bad things.
कुछ बादशाहों ने बहुत बुरे काम किए.
And very strange is it, you can have one king good and the son bad. Also the contrary, a king bad and the thing good, a son good.
और बाज ऐसा भी हुआ है कि अगर बादशाह ने अच्छे काम किए हैं तो उसके बेटों ने बुरे काम किए होंगे, या अगर बादशाह ने बुरे काम किए हैं तो बेटों ने अच्छे काम किए होंगे.
We can read, for example, 2 Chronicles 26, Ozias. Ozias is written, verse 4, he did good things. You can read, for example, in the Bible, 2 Chronicles 26, not to go deep in the Chronicles. 2 Chronicles 26, verse 4.
मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे दूसरा तवरीख 26 बाब उसकी चौथी आयत.
We speak of Uzziah or Zayas.
और यहां पर हम उज़िया की बात करेंगे.
Verse 4, and he did what was right in the eyes of the Lord. According to all that his father Amaziah had done.
उसने वही जो खुदावंत की नजर में दुरुस्त है ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप अमस्याह ने किया था.
Okay, so we see Ozias did good thing.
और हम देखते हैं कि उज़िया ने जो है वो अच्छे काम किए.
You take, for instance, Ozias after his life, in the end of his life, later, that he did things in his heart negative things.
और आप देखें कि जब उज़िया का जो आखिरी आयाम थे तो उसने जो है वो गलत काम करना शुरू कर दिया.
That's very funny because today I was talking with my daughter Grazia and she was reading a book about people who want to be king, and this became, let's say, he became very bad guy because of this desire to be king. to be the boss.
और आज ये एक बड़ी अजीब बात भी है और मैं और मेरी बेटी जो है वो बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बादशाह बनते हैं और ये वो बादशाह था जिसने जिनकी ख्वाहिश कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बादशाह बने लेकिन ये वो बादशाह था जिसकी ख्वाहिश थी और जब ये बना तो इसने आखिर में बुरे काम शुरू किए.
But you see verse 16, a bit, like we call the book Macbeth. You know, some people can be too proud of themselves, and then they begin to fall.
आप सोच में देखे तो आप देखे कि कुछ लोग जो हैं उनके अंदर गुरूर आ जाता है और जब गुरूर आ जाता है तो फिर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं.
I just read with you. It's not a secret. You just read. But 16, 2 Chronicles 26, 16, but when he was strong, he grew proud to his destruction. For he was unfaithful to the Lord, his God, and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. But he was not a Levite, he could not do it.
And you see, that this is not a difference, but in Surah Al-Ayat, we read it, 16. लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा. चुनाचा वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बकूर की कुर्बानगाह पर बकूर जलाए, हालांकि वो लावी या काहिन नहीं था.
And I think that I have already listened, Brother Branham or Brother Frank, speaking of this.
और मेरे ख्याल में भाई ब्रनम या भाई फ्रैंक ने इसके बारे में कलाम सुना है और मैंने उसको सुना है.
So saying to some people, you know, some Christians, that they should not try to do a work which was not given to them to do by God.
और उन्होंने ये कहा कि वो मसीही जिनको जो काम नहीं दिया गया वो काम मत करें और ना ही उनको करने की.
The famous sermon of Brother Branham, to give God a service without that it be His will.
और एक मशहूर भाई का पैगाम है कि खुदा की खिदमत करना बगैर खुदावंद की मर्जी के.
So we can read, brother, it's very interesting here. But Azariah the priest went in after him with 80 priests of the Lord who were men of valor.
और लिखा है 17, तब उज़रिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे.
And they withstood King Uzziah and said to him, it is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense, go out of the sanctuary, for you have done wrong, and it will bring you no honor from the Lord God. Amen.
Amen. और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उज़िया, खुदावंद के लिए बकूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बकूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं. सो मकद्दस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा.
So we can imagine it was not his task.
आप तसव्वुर करें कि आप देखें कि ये उसका काम नहीं था.
And here we don't speak of the time. Not only it was not the time of God, but it was also not his task.
और एक ये खुदावंद का ये हुक्म भी नहीं था और दूसरी बात ये उसका काम भी नहीं था.
And then what happened?
और फिर क्या हुआ?
When you know the Bible says, if you receive a correction, you must obey. If another speak to you, or your papa speak to you, you must obey. You must not harden your heart.
और अगर आप देखें कि कोई आपसे बुजुर्ग जो है वो कुछ कहता है या आपका वालिद आपसे कुछ कोई भी कुछ कहता है तो आपने उनकी बात को सुनना है, अपने दिल को सख्त नहीं करना.
Brother Frank was in Canada, and Brother Branham said to him, "You will go back to Germany to distribute the message." So he has not hardened his heart. He has just obeyed what God said to him.
और भाई फ्रैंक जो थे वो कनाडा के अंदर थे और भाई ब्रनम ने उनसे कहा कि तुम वापस जर्मनी जाओ और वहां पर जाकर इस खिदमत का करो और अभी इंतजार करो. उन्होंने अपने दिल को सख्त नहीं किया बल्कि उन्होंने उनकी बात को सुना और वो वापस जर्मनी चले गए.
For those who have been baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost in the Trinity, if someone said to you, be re-baptized in the name of the Lord Jesus Christ, you must obey. You must obey, not do your will.
और अगर अभी तक आपने बपतिस्मा जो है वो यीशु के नाम का नहीं दिया, तो अगर आपने दूसरा तस्दीस का बपतिस्मा लिया है, तो फिर भी अगर कोई आपसे कहता है, तो आपने इस बपतिस्मे को दुरुस्त करना है और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है.
And so, look what happened. And the wish to King Uzziah and said to him, it is not for honor. And then, what happened? Then Uzziah was angry. Angry because he was not a believer. Now he had a censer in his hand to burn incense. And when he became angry with the priests, leprosy broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of the Lord by the altar of incense.
और 19वीं आयत के अंदर लिखा है 19 तब उज़िया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूर दान अपने हाथ में लिए और जब वो काहिनों जा रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला.
So it's written that he has this leprosy until the day of his death.
और ये कोड तब तक इसके ऊपर रहा जब तक वो मरा ना.
And he had to live in the isolated house.
और फिर इसके बाद वो एक अकेले मकान के अंदर उसको रखा गया.
And then you see Yotam, his son.
और फिर आप देखें उस वक्त उसका जो बेटा था.
It's written 27:2. It's written, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all his father Uzziah had done. According to the good things.
और लिखा हुआ और सरदार काहिन उस काहिनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोढ़ निकला है और जो उसने किया है.
And then he died. Yotam.
और फिर वो मरा.
His son Ahaz took his place.
और उसका बेटा जो है योताम उसकी जगह पर आया.
And strange, so Yotam is positive guy, Ahaz negative guy.
और योताम जो था एक अच्छा बंदा था और जो दूसरा था वो बुरा बंदा था.
And so it teaches us that we cannot, so we say often that God has only children and daughters, not grandchildren or granddaughters.
और आप देखें कि खुदा के सिर्फ बेटे और बेटियां होते हैं. ऐसा नहीं होता कि बड़े बेटे या छोटे बेटे हो गए.
So we cannot transmit the salvation to our children, even with the best education, the best ministries that you want. We cannot transmit salvation. Everybody must have his own experience with the Lord Jesus Christ.
हम निजात को अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि निजात जो है ये शख्सी तौर पर होती है और हर किसी ने खुद अपने लिए इस निजात को चुनना होता है.
And here very strange because Ahaz made exceedingly bad things.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने बहुत से बुरे काम जो है वो किए थे.
Brother, you can read from 1 to 4 alone in Urdu. 28, 1 to 4. 2 Chronicles 28, 1 to 4.
दूसरा तवारीख 28 बाब 1 से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे. लिखा है 1 अखज 20 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 16 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वो ना किया जो खुदावंत की नजर में दुरुस्त है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था। बस तू बल्कि इसराइल के बादशाह की राहों पर चला और बालीम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाई। बस थ्री इसके सिवा उसने हनूम के बेटे की वादी में बकूर जलाया और उन कौमों की नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावंत ने बनी इसराइल के सामने से खारिज किया था अपने ही बेटों को आग में झोंका। फोर उसने ऊंचे मुकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बकूर जलाया।
एंड देयरफॉर द लॉर्ड हैज गिवन गेव हिम इनटू द हैंड्स ऑफ द किंग ऑफ सीरिया, व्हिच मींस इन द हैंड्स ऑफ द एनिमीज।
और इसीलिए उसे जो है वो अजरिया के हाथ में कर दिया गया क्योंकि वो दुश्मन था और उसके दुश्मनों के खुदा ने उसको सुपुर्द कर दिया।
So in spiritual language, if someone disobeyed the word of God by incredulity, by unbelief, he will finish in the hands of the devil that is in the world.
और जब हम इसको रूहानी तौर पर देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई जो है वो रूहानी तौर पर दुरुस्त नहीं है, बुरे काम कर रहा है, तो फिर खुदा जो है उसको अब्लीस के हाथों में कर देता है ताकि फिर अब्लीस उसके साथ जो कुछ मर्जी करे।
And you see, they even took brothers as their slave, which had to be corrected.
और आप देखें कि उसके भाई जो थे उनको भी गुलाम बना लिया गया, तब तक वो गुलाम रहे जब तक वो दोबारा से उन्होंने दुरुस्त ना हो रहे।
We cannot make brothers like the eighth verse, the Israelites. So it's written, the men of Israel took captive 200,000 of their relatives, women, sons and daughters. We cannot do it. So he had to repent.
और आप देख सकते हैं कि कितने उस वक्त लोग थे जो उस वक्त इस तरह से थे और वो फिर इंतजार नहीं कर सकते थे और उन्होंने तब तक भी उनका इंतजार किया जब तक उन्होंने तौबा ना कर ली।
And you will read that thanks to a prophet they obeyed, and the verse 15 say that they have repent from the bad works and they have taken care of the people.
और 15वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने तौबा की और उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद फिर जो है उनको उनके हाथों से छुटकारा मिला।
And you see that the faith always is accompanied by works, good deeds, good fruits.
और आप देखें कि जो ईमान है वो हमेशा कामों से पहचाना जाता है और वो अच्छे कामों से है।
You can read what they have done in verse 15. Very good thing.
हम पढ़ते हैं उन्होंने 15वीं आयत में क्या किया, इसमें अच्छे काम थे।
You can read 15, brother.
तीन और वो आदमी जिनके नाम मजकूर हुए थे और असीरों को लिया और लूट के माल में से उन सबों को जो उनमें नंगे थे लिबास से आरास्ता किया और उनको जूते पहनाए और उनको खाने पीने को दिया और उन पर तेल मिला और जितने उनमें कमजोर थे उनको गधों पर चढ़ाकर खजूर के दरख्तों के शहर यरू में उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया, तब सामरिया को लौट गए।
Yes, and then you see very very funny thing. This king is written verse. Verse 16, this is, we are entering politics here. Verse 16.
और आप देखें कि यहाँ पर एक मजाकिया चीज है, यहाँ पर हम सियासत के अंदर दाखिल होने लगे हैं। 16वीं आयत के अंदर आप देखें, 16.
It's very strange. It's like for example, you see the president of Ukraine asking help to Russia. You see, it's a bit strange.
और ये ऐसी ही है जैसे अजीब बात थी, जैसे आपको पता कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वो मदद मांगने के लिए गया और उसके साथ क्या हुआ।
So at the time King Ahaz sent to the king of Assyria, the enemy, for help. Who can understand this?
और आप देखें कि यहाँ पर जो अहज बादशाह ने असूर के बादशाहों के पास कहला भेजा मदद के लिए।
But 20 is written clearly, Tiglath-Pileser, king of Assyria, came against him and afflicted him instead of strengthening him.
और तीसरी आयत के अंदर लिखा है और सूर तिलगत पिलनासर उसके पास आया पर उसने उसको तंग किया और उसकी कुमक ना की.
And just before is written clearly why? For the Lord humbled Judah because of Ahaz, king of Israel, and for he had made Judah act sinfully and had been very unfaithful to the Lord.
और इससे ऊपर हम देखें 19वीं आयत 19 के अंदर लिखा है क्योंकि खुदावंद ने शायद इसराइल अखज के सबब से यहूदा को पस्त किया इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावंद का बड़ा गुनाह किया.
And 21, for Ahaz took a portion from the house of the Lord and the house of the king and the princes and gave tributes to the king of Assyria, but it did not help him, of course.
21वीं आयत के अंदर लिखा है क्योंकि अखज ने खुदावंद के घर और बादशाह और सरदारों के महलों से माल ले लिया लेकर शाह असूर को दिया तो भी उसकी कुछ मदद ना हुई.
You can imagine it's like taking the tithes and the gift of the church and you give to your enemies, you give to denominations. This means this, you take the things, the sacred things of God and you give them to denominations, organizations, instead of taking care of the distribution of the message of the hour.
और आप देखिए ये ऐसे ही है कि आप दैज की देते हैं और दैज की वो आगे जो इस्तेमाल होती है वो खुदा के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होती है, denominations के लिए इस्तेमाल होती है और हालांकि ये खुदा की मखसूस चीजें होती हैं, ये खुदा के काम की चीजें होती हैं और खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए.
And it shows also verse 19 that we have read, because of Ahaz king of Israel, for he had made Judah act sinfully and had been very unfaithful to the Lord.
Which verse?
19.
क्या है क्योंकि खुदावंद ने शायद इसराइल अखज के सबब से यहूदा को पस्त किया इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावंद का बड़ा गुनाह किया था.
So there is something that I think that when someone, he can be want to be called pastor, whatever, when he wants to do what he wants, when he doesn't want to listen, it's like destroying the church. It's the same.
और ये ऐसे ही है जैसे जो अपने आप को पास्टर कहते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं और वो कलीसिया को जोड़ने के बजाय वो कलीसिया को तबाह कर रहे होते हैं.
You see, I told you some people have a, instead of the head, they have a coconut, very hard. And when they harden the heart, they destroy the church.
और आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग जो है वो बहुत सख्त होता है और वो जोड़ने के बजाय वो तोड़ने का काम करते हैं.
And even 22, even in the time of his distress, he became yet more faithless to the Lord. This came, the same king Ahaz. So, even in the distress, he is still unfaithful to the Lord. It's quite incredible.
और आप देखें कि ये कितना शानदार था 22वीं आयत के अंदर और अपनी तंगी के वक्त में भी उसने यानी उसी अखज बादशाह ने खुदावंद का और भी ज्यादा गुनाह किया.
In the New Testament, when we are under distress, we pray, we want to, because the Bible said to be converted, we must change direction. Conversion is changing direction.
और आप देखिए कि नए अहदनामा में जब आप तंगी के अंदर होते हैं तो आप तौबा करते हैं और अपने रूह को तब्दील करते हैं.
And our direction is believe the Lord, believe the Lord, believe the word. This is our direction.
और हमारी जो direction है वो क्या है, वो खुदावंद पर ईमान रखना और ये हमारा रास्ता है.
And you see the 23rd, it is again foolishness, for he sacrificed to the gods of Damascus that had defeated him and said, because the gods of the kings of Syria helped them, I will sacrifice to them that they may help me. But they were the ruin of him and of all Israel.
और 23वीं आयत में आप देखें लिखा है क्योंकि उसने दमिश्क कि देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियां की, और कहा चूंकि राम के बादशाह के महबूदों ने उनकी मदद की है सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूंगा ताकि वो मेरी मदद करें, लेकिन वो उसके और सारे इसराइल की तबाही का बाइस हुए।
And Ahaz gathered, listen well, together the vessels of the house of God and cut in pieces the vessels of the house of God and shut up the doors of the house of the Lord, and he made himself altars in every corner of Jerusalem. He lost his mind.
और 24वीं आयत के अंदर लिखा है, गौर से सुनिएगा, 24, और अखज ने खुदा के घर के बर्तनों को जमा किया और खुदा के घर के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया और खुदावंद के घर के दरवाजों को बंद किया और अपने लिए यरूशलेम के हर कोने में मजबे बनाए। वो अपना दिमाग खो चुका था।
And so now it's written in the city of Judah, he made high places to make offerings to other gods, provoking to anger the Lord, the God of his fathers.
और यहूदा के एक एक शहर में गैर मबूदों के आगे बकूर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनाए और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को गुस्सा दिलाया।
You remember what Jesus said concerning the, it's written, he closed the door. You remember this, what Jesus said for those who closed the door?
और आपको याद है यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कहा जो दरवाजों को बंद कर देते थे?
In Matthew, take 23, brother.
मत्ती 24 बाब के अंदर लिखा है,
Because of the human mind, human flesh, human doctrines, human practices, the Pharisees closed the door.
क्यों वो दरवाजे उन्होंने बंद किए? इंसानी जहन की वजह से, इंसानी कामों की वजह से, इंसानी मंसूबों की वजह से, या इंसानी बातों की वजह से जो फरीसी थे वो दरवाजों को बंद कर देते थे।
Let's read 23:13. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut the kingdom of heaven in people's face. For you neither enter yourselves, not allow those who would enter to go in.
मत्ती 23 बाब उसकी 13 आयत के अंदर लिखा है, एरियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो।
So you see the story repeats itself.
और आप देखिए कि तारीख फिर एक बार दोहराई जाती है।
When you let someone in this fanatism, when you let someone to be dictator, it will destroy his own people.
और जब आप किसी को जो है वो अपने ऊपर भारी होने देते हैं या किसी को ये मौका दे देते हैं कि वो आपके ऊपर चढ़ाई करे तो फिर वो चढ़ाई करना शुरू कर देता है।
A dictatorship is always evil.
और चढ़ाई करना हमेशा बुरी बात है।
You can read, go on the internet, look for dictators everywhere in Africa, in Asia. They kill their own people.
और आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और आप देखें कि ये रोब डालने वाले या चढ़ाई करने वाले लोग इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा मौजूद हैं और ये अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं।
Maybe you have heard about Amin Dada. Amin Dada in Uganda. So he ate his own victims. You can imagine. Cannibalism.
और एक शख्स है अमीन दादा, आपने शायद सुना हो इसके बारे में, अफ्रीका का ये शख्स है, इसने जो इसके गवाह थे उसने उन गवाहों को खा लिया।
That's why in the Bible is written always elders plural, not a fanatic, one man fanatic who destroyed the whole church.
और इसीलिए कलाम कहती है कि जो एल्डर्स हैं वो हमेशा जमा के अंदर होने चाहिए, ज्यादा तादाद के अंदर होने चाहिए ताकि एक ना हो और वो एक जुनूनी या जज्बाती ना हो।
And I repeat to you, when someone wants to be the chef or to be the king or to make pastor solo, I can do everything alone, he is very, he has lost his mind.
और मैं आपको फिर ये बात याद दिला दूं कि अगर कोई अकेला पादरी बनना चाहता है और वो कहता है कि सब कुछ अकेले मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही करना चाहता हूँ तो वो उसका दिमागी तवाजन जो है वो दुरुस्त नहीं है.
एंड देन स्ट्रेंजली द सन ऑफ अहाज हिज़किय्याह वाज़ अ गुड मैन.
और फिर जो उसका जो एक बेटा था उज़िय्याह का वो एक अच्छा शख्स था.
Yes, we cannot transmit nothing, absolutely nothing.
और हम किसी के अंदर कुछ भी मुंतकिल नहीं कर सकते हैं.
You can invite yourself, you can invite 100, 1000 people on the internet to listen to the sermon. If you are not from the seed of God, you cannot force someone to believe. Impossible.
और अगर आप इंटरनेट के ऊपर 10,000 लोगों को भी दावत दे दें तो फिर भी आप उनको जोर नहीं दे सकते कि आप इसको कबूल करें ही करें.
And today I have thought it's a way of preaching of Brother Branham. He said one out of 1 million.
और आज मैं ये बात सोच रहा था और मैंने इस बात को सुना भी. उन्होंने कहा जी 1 million में से एक शख्स जो है वो बाहर निकलता है.
Of course, it's not we are not making calculus here, but imagine. One out of 1 million going to rapture. The other one, the other people just believe in Jesus Christ and they are happy like this.
और 1 million में से एक शख्स जो है वो rapture का हिस्सा बनेगा और बाकी जो है वो जैसे हैं वो वैसे ही रह जाएंगे.
But the very, very, very peculiar people is the bride. Very special.
लेकिन जो बहुत ही खास लोग हैं वो उसकी दुल्हन है और वो खास है.
They are not happy just to go in the church or go on internet and they are happy 1 hour. No, they are very special people who love the word of God above all things.
और वो बहुत खास लोग हैं जो सबसे ज्यादा खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं और उसके कलाम के साथ मोहब्बत करते हैं.
And this is what we call the bride word.
और इसको हम कहते हैं कि ये दुल्हन का कलाम है.
And so this man in Zechariah 29, he did what was good in the eyes of God.
और फिर हम देखते हैं हिज़किय्याह 29वीं आयत के अंदर उसने वो किया जो खुदावंद को पसंद था.
We will not read it, but you see verse 4, he gathered the Levites and the priests.
और हम इसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन आप देखें लिखा हुआ है कि उसने लावियों को और काहिनों को इकट्ठा किया.
And the Lord Jesus Christ spoke to Brother Frank, Ivar Frank, and he quotes Psalm 50, gather my people.
और Brother Brown ने
Brother Frank.
बुजुर्गों को भाई फ्रैंक ने जो है वो बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उसने जबूर साम
50
ज़बूर 50 जो है उसको पढ़ा के मेरे लोगों को इकट्ठा करो.
So here among us, we are only 5 families listening for the moment. The families should gather. But if they don't gather, according to me, they are not from the bride.
और अभी इस वक्त 5 जो खानदान है वो हमारे साथ इस कलाम को सुन रहे हैं लेकिन अगर वो इकट्ठी हैं तो वो मसीह की दुल्हन है.
And together who? The servants of God. So it means that it's not against not the one man system. He gathered all the servants of God, the elders.
और सबका इकट्ठा होना यहाँ पर एक वंदन वाला सिस्टम नहीं है बल्कि सब जो है वो इकट्ठे होने चाहिए.
You remember in Acts 20 or 15 the Apostle Paul when fetched the elders. So it's very important to gather the servants of God.
और आपको याद है पौलुस रसूल जो है वो अपने खत में कहता है कि बुजुर्गों को लेकर आओ.
Verse 5. When you read
5वीं आयत,
you can read verse 5 over there. 29:5.
29 बाब की 5वीं आयत.
You can read it.
लिखा है और उनसे कहा ए लावियो मेरी सुनो तुम अब अपने को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के घर को पाक करो और इस पाक मुकाम में से सारी निजासत निकाल डालो.
Consecrate yourself and consecrate the house of the Lord.
अपने आप को पाक करो और खुदा के घर को पाक करो.
So, there are a lot of verses about the sanctification. That sanctification is very important to understand, is to be put apart, to be put apart to the service of God.
और पाक जो पाकीज़गी है ये बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है और ये एक हिस्सा है.
Because some people will believe I must do. You know, personal sanctification. True sanctification comes from the Word, by the Spirit.
और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी मैं कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ऐसे कर दूँगा लेकिन जो हकीकी पाकीज़गी है वो खुदावंद की तरफ से है और वो रूह से मिलती है.
Read Brother John 17. Because it's true that we sanctify ourselves, but it is in reality it is the Word, eh? it's not us.
और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 के अंदर ये सच है पाकीज़गी लेकिन जो हकीकी पाकीज़गी है वो हमें खुदा के कलाम से हासिल होती है.
John 17:17.
यूहन्ना 17:17 हम पढ़ेंगे.
Sanctify them in the truth. Your word is truth. Amen.
लिखा है उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर तेरा कलाम सच्चाई है. आमीन.
2 Corinthians 11.
दूसरा करिन्थियों 11 बार.
When Paul spoke about the jealousy, that he was jealous. You remember? We can read it.
पालू जो है वो असद की बात करता है. हम इसको पढ़ते हैं.
1:2:4 I feel a divine jealousy for you since I betrothed you to one man to present you as a pure virgin to Christ.
लिखा है दूसरी आयत के अंदर मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं.
And when you read, he speak well about sanctification from far, far from the false doctrines. To be far, do not accept false doctrine.
और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है कि हमने जो झूठी तालीम है उससे बहुत ज्यादा दूरी इख्तियार करनी है. उस झूठी तालीम को कबूल नहीं करना.
Very clear, verse 4, if somebody comes and proclaims an other Jesus, that's the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from this one you accepted, you put up with it readily enough.
और चौथी आयत के अंदर लिखा है फोर क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता जिसकी हमने मुनादी नहीं की या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है.
आमीन. यू सी द ट्रू सैंक्टिफिकेशन बाय गॉड हिमसेल्फ.
आप देखें कि जो हकीकी पाकीज़गी है वो खुदा खुद हमें देता है.
एंड देयर आर अदर वर्सेस ऑफ कोर्स सेइंग दैट सैंक्टिफाई योरसेल्फ ओके बट इट इज ऑलवेज टू बी डिपार्ट टू बी far from the things of the world, the doctrine of the world, the false doctrine, and to be pure by the word of God.
और इसमें और भी आयत मौजूद है जो हमें बताती है कि हमने किस तरह से पाक होना है लेकिन इसमें से एक हिस्सा ये भी है कि हमने जो झूठी तालीम है उसे दूर रहना है और उनसे दूरी इख्तियार करनी है फिर ही हम खुदा के कलाम के साथ अपने आप को पाक कर सकते हैं.
And you know, in 1 Corinthians 10, Paul prayed that there were no divisions among us, so to be united in the same mind.
और पहला करिन्थियों 10 बाब के अंदर जहाँ पर पालूस कहता है कि अब हम में कोई भी अलग ना रहा बल्कि हम में एक ही रूह है हम सब एक ही जात के साथ हैं.
So someone say, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas, I follow Christ. So we must not do this.
और अगर कोई कहता है कि जी मैं मसीह की पैरवी करता हूँ मैं ऐसे करता हूँ तो ये उस सिर्फ कहने से पाक नहीं होता बंदा.
And then when I come back to 2 Chronicles 29.
और फिर हम आते हैं वापस दूसरा तवारीख उसकी 29वीं आयत के अंदर
2 Chronicles 29
दूसरा तवारीख 29 पा
verse 6 you can read it
उसकी 6वीं आयत लिखा है क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ की पीठ उसकी तरफ कर दी।
Our fathers have been unfaithful.
हमारे जो बाप दादा थे वो गैर ईमानदार थे।
We, I repeat, we do not follow papa or mama. We have read it with the kings. Nobody can save nobody. It is a personal experience. If your papa or your mama did bad things, you do not follow them. You follow the word of God, the written word of God. And it is written, they have forsaken him and have turned away their faces from the habitation of the Lord and turn them back. What does it mean?
और यहाँ पर लिखा है कि उसे खुदा की नजर में वो बुरा ही है और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। इसका क्या मतलब है?
So it means that they have turned their back to the Bible, to the written word of God.
इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो पीठ है वो खुदावंद के कलाम की फेर ली है।
You cannot imagine the power of the tradition. The tradition is very, very, very difficult to put out.
आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये जो रवायतें हैं इनकी कितनी पावर है।
I know.
हम पर हावी हो जाती हैं।
I've been more than 3 years in Pakistan. And I know that if I come back, I will see again people doing the same mistake because it's so deep rooted in them that they cannot change like this. They need a miracle.
और मैं जानता हूँ मैं अभी फिर पाकिस्तान वापस आऊँगा तो हम देखेंगे कि लोग फिर से वही काम कर रहे हैं सीखने के बावजूद उन्होंने वही काम शुरू कर दिया क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं
For example, you see the people who repeat like parrots, and the father has many babs like parrots. God has never in the Bible you see repetition of the brain, with the brain, never.
और आप देखें कि लोग जो हैं वो दोहराई करते हैं या तोतों की तरह उन्हीं चीजों को दोहराते हैं जैसे आसमानी बाप या इस तरह की जो चीजें हैं इनको बार बार दोहराते रहते हैं लेकिन बाइबल के अंदर ये बार बार दोहराने वाली चीजें नहीं बताई गई।
On the contrary, it's written that we must pray. Pray means dialogue with God, it's not something else.
और इसके मुताबिक ये बात लिखी हुई है कि हमने दुआ करनी है और दुआ जो है वो दोहराना नहीं बल्कि खुद
It's written verse 7. Sami?
Yes, brother, I'm here.
Verse 7.
Satvi ayat.
You can read it.
और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चिराग बजा दिए और इसराइल के खुदा के मुकद्दस में ना तो बखूर जलाया और ना सोखने ने कुर्बानियां चढ़ाई।
They have not burned incense. What does it mean?
और उन्होंने बकूर ना जलाया इसका क्या मतलब है?
It means that they have not prayed. In the New Testament, it means prayer.
और इसका मतलब है कि उन्होंने दुआ नहीं की क्योंकि नए अहदनामे के अंदर इसका मतलब दुआ करना है।
We pray every time, all time, every day, always.
और हर वक्त दुआ करें, हर दिन दुआ करें, हर वक्त दुआ करते रहें।
It is a question of heart. It's not a question of mouth.
ये दिल का सवाल है ना कि ये मुंह की बात है।
Verse 10.
दसवीं आयत।
Now it is in my heart to make a covenant with the Lord, the God of Israel, in order that his fierce anger may turn away from us.
اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا شہر اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے.
And then very very important verse brother 11. I read it.
اور ایک بہت ہی خاص آیت 11ویں میں اس کو پڑھتا ہوں.
My sons, do not now be negligent, for the Lord has chosen you to stand in his presence, to minister to him, and to be his ministers and make offerings to him. Amen.
اور 11ویں آیت میں لکھا ہے, اے میرے فرزندو تم اب غافل نہ رہو کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاؤ. آمین.
Hallelujah. And here for the moment, brother, most probably I will go on with the True Chronicles next week, maybe.
اور امید ہے کہ ہم جو ہے اگلے ہفتے میں بھی دوسرا تواریخ کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے.
Because it's very important what we are going to read here, because it is exactly the restoration, to reestablish the pure doctrine and the pure deeds and pure baptism, the pure foot washing, etc. So restore all things.
کیونکہ یہ بہت ہی ضروری اور اہم ہے, کیونکہ اس میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں, اور تمام جو کام ہم کرتے ہیں جس میں حقیقی تعلیم ہے, کس طرح سے ہم نے بپتسمہ لینا ہے یا شاعر بانی کس طرح سے ہم نے لینی ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں ملیں گی.
So do not be negligent.
آپ نے بھی ان کی مانند نہیں بننا.
I will just read with you for our meditation how we must work for the Lord.
ہم نے آپ کے ساتھ مل کر پڑھا ہے اور اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں.
May the Spirit of God and His wisdom be with us.
اور خداوند کا روح اور اس کی حکمت ہمارے ساتھ ہو.
Proverbs 10:4. And we'll finish by a few sentences, a few verses.
امثال 10 باب اس کی 4 آیت سے ہم پڑھیں گے اور چند جملے پڑھ کر ہم اس کو ختم کریں گے.
Some examples to show how we must work. Proverbs 10:4. A slack
اور ایک چند
Yes. A slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. We speak spiritually.
جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے, لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. روحانی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں.
Hallelujah. You understand, spiritually we must not sleep, we must always work and try to do things correctly in the eyes of God.
اور جب ہم اس کو روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو ہم نے سوتے نہیں رہنا, بلکہ ہم نے روحانی طور پر کام کرنا ہے اور ہمیشہ روحانی طور پر جاگتے رہنا ہے اور محنت کرنی ہے.
Proverbs 13:4.
امثال 13 باب اس کی 4 آیت.
The soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Amen.
لکھا ہے, سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا, لیکن محنتی کی جان پر باہ ہوگی. آمین.
Hallelujah. Proverbs 18:9.
امثال 8 باب 9 آیت.
And this is really also the New Testament.
اور یہ نئے عہد نامہ کے اندر بھی ہے.
Whoever is slack, slack means lazy, eh? In his work is a brother to him who destroys.
لکھا ہے, سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں.
Hallelujah. Ecclesiastes 9:10. Ecclesiastes 9:10. Just the book after, Ecclesiastes.
Okay.
The preacher. I don't know if you know Luke. Ecclesiastes, the preacher. Maybe it's written the preacher.
Oh, wise. Okay.
Yes, a wise. Okay. 9:10.
No, Bob, uske dasait.
Whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. Amen.
Amen. Vaaz no baap uske 10 ayat 10 jo kaam tera haath karne ko paaye use maqdoor bhar kar kyunki pataal mein jahan tu jata hai na kaam hai na mansooba na ilm na hikmat. Amen.
Hallelujah. Proverb 24.
Misal
24. 30. And we. 34. I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of a man lacking sense, and behold, it was all overgrown with thorns. The ground was covered with nettles, like thistles, bad herbs, and its stone wall was broken down. Then I saw and considered it. I looked and received instruction. It is a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. Amen.
Amen. Amsal 24 باب اس کی 30 آیت سے پڑھیں گے. میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا. 31 اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. 32 تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا. ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی. 33 تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. 34 اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. آمین.
آمین. We have read recently Romans 12. Do not be slothful in zeal, but fervent in spirit. Romans 12:11.
اور ہم نے پڑھا رومیو 12 باب उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो रूहानी जोश में भरे रहो खुदावंद की खिदमत करते रहो.
Hallelujah. And we finish by the verse that Jesus Christ said with the parable of the talents in Matthew 25.
और इस आयत के साथ हम इसको खत्म करेंगे जो यीशु मसीह ने अपनी मिसाल के अंदर कही. मत्ती 12 बाब
26:30
25, 26 to 30. Matthew 25, 26 to 30. Matthew 25,
26 to 30. So we remember that there was a work that had to be done.
And आपको याद है कि एक काम था जो करना था जो मालिक ने अपने लोगों को दिया था.
The parable of the talents, but we read only the rest, the end.
हम इसके इस मिसाल का खाली आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे.
But his master answered him, "You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming, I should have received what was my own interest. So take the talents from him, and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But for the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In the place there will be weeping and gnashing of teeth. Amen.
Amen. हम इसको पढ़ेंगे. लिखा है, उसके मालिक ने जुआ में से कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं. बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को दे देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता. बस इससे वो थोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे भी वो ले लिया जाएगा जो उसके पास है. 30, और उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा.
You remember what I said at the beginning of the sermon?
और आपको याद है मैंने पैगाम के शुरू में क्या कहा था?
When we listen, for example, to this parable, in our brain, in our heart, we would like to move, we would like to work, because we don't want to be rejected.
और जब हम अपने दिमाग की सुनते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा कोशिश करें ताकि हम रद्द ना कर दिए जाएं.
But we must be led by the Holy Spirit.
लेकिन हमने हमेशा पाक रूह की रहनुमाई में चलना है.
So how can we conjugate the two? How can we have the both, understand both things which seem to be contradictory?
और किस तरह से हम दोनों हो सकते हैं जिसमें हम देख सके कि कौन सी चीज दुरुस्त है और कौन सी चीज दुरुस्त नहीं है?
It is by the prayer.
और ये सिर्फ दुआ के साथ है.
Until now I have not found a church in China here.
अब तक मैंने यहाँ पर चाइना के अंदर चर्च मुझे नहीं मिल सका.
But I pray always, I pray that I speak a lot, of course, I speak when I can speak to my colleagues or people, but I'm waiting, and I know that the time of God is the best time.
और मैं बहुत ज्यादा अपने colleagues के साथ, दोस्तों के साथ बात करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद अभी वक्त नहीं आया. मेरा वक्त तब आएगा, मुझे चर्च तब मिलेगा जब खुदावंद का वक्त होगा और खुदावंद मुझे अता करेगा.
And this is the most important thing, it is to wait for the leading of the Holy Spirit.
और ये बहुत ही ज्यादा अहम और जरूरी चीज है, खुदावंद की, खुदा के रूह की रहनुमाई.
A very important circular letter of Brother Frank who is speaking about Moses.
और एक बहुत ही अहम भाई फ्रैंक का इश्तेहारी खत जिसमें उन्होंने मूसा के बारे में बात की.
The moment was drawing near and then the moment was there. There was two different things.
और एक लम्हा जब आप डूब रहे होते हैं और दूसरा लम्हा भी वहीं पर मौजूद होता है.
You understand, brothers?
समझ आई है भाई आपको?
There's a moment for everything and we must wait. And this is not contradictory with the fact that we must be zeal in the zeal. We must be active. There's no contradiction.
और हर चीज का एक लम्हा होता है और हमें इंतजार करना है कि कब वो लम्हा आएगा और कब हम उस लम्हे को लेकर उस पर अमल करेंगे.
You remember some people accuse Brother Branham. Well, Brother Branham, you have so many people who are sick. What are you doing fishing and hunting? And Brother Ram said, I need sometimes a rest.
और आपको पता है कि बहुत सारे भाई थे जो भाई ब्रैनम के ऊपर इल्जाम लगाते होते थे, उनको बुरा भला कहते थे कि भाई ब्रैनम आप क्या करते हैं, आप मछलियां पकड़ने जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं. लेकिन वो कहते थे कि मुझे भी रेस्ट की जरूरत है, मुझे भी आराम की जरूरत है.
एंड सो फॉर मी आई एम वेटिंग एंड गॉड नोज दैट आई देयर इज समथिंग टू डू इवन इन पाकिस्तान देयर इज समथिंग टू डू बट वी मस्ट ऑलवेज वेट for God's leading.
और मैं भी ये बात जानता हूँ कि हमेशा वक्त का इंतजार करना चाहिए. कुछ लोग जो होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं.
You remember when you were in my home with the brothers?
आपको याद है जब आप मेरे घर पर थे भाइयों के साथ?
We read for the first time. We read, for example, a verse. For the first time, it was a bit astonishing, a bit strange.
और एक आयत जो हमने पढ़ी थी और वो एक जो है वो चौंका देने वाली आयत थी.
Acts 16, 7.
Amal 16 bab uski 17 ayat.
Acts 16:7.
Amal 16 bab uski 17 ayat.
Read it, brother.
Likha hai 16:7.
Yes.
Amal 16 bab uski 7 ayat. Likha hai. और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया. आमीन.
And when they had come to Mysia, they attempted to go into Bithynia. But the Spirit of Jesus, can you imagine? Oh, Jesus was not there. Yes, Jesus is God. The Spirit of Jesus did not allow them.
आप देखें कि उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया.
You see, and there was another verse, if you remember, with Asia. They wanted to go in Asia, but in Asia, God did not permit to go in Asia.
और एक और आयत है जिसमें वो आसिया के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन खुदा ने उन्हें इजाजत ना दी कि वो आसिया के अंदर जाएं.
And maybe this you can find it also, brother, in Acts also of the Apostles.
और इसको भी आप रसूलों के अमाल के अंदर ये आयत आपको मिल जाएगी.
Maybe you can find it, brother, if you want to read it now.
इसको हम पढ़ लेते हैं अभी ही.
And it is, I think, in Acts. Let's see. I believe it's 15, something like this. You remember? I believe it's 15, in Act 15. You remember, brother? Hello, brother?
Yes, brother, I'm listening.
Yes.
I'm finding.
I believe it's, we'll find it. Because it's important to know that sometimes God does not allow to do things as we believe with our brain.
और ये पढ़ना लाजमी है, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन खुदा हमें उसको करने की इजाजत नहीं देता.
And you see where, brother, in Acts, you remember this verse that we have read in my home? I can find it. Just give me 1 second, because it's not by heart that we know the things. Eh?
Yeah. Sirf, main isko chhod leta hoon. Sirf ek second lagega, kyunki ye kuch cheeze hoti hain jo hame matlab waise yaad hoti hain, lekin hawala jo hai wo zehen se nikal jata hai.
I believe it was 14 or 15.
Chapter 14.
14 or 15, brother, you have it? Did you see it? It was, we have read this verse. It was the verse that we have read. The Spirit of Jesus did not allow them. Anyway, it's not so important that we have read this and we know that it is written. Huh? Hello, brother? So we know that, I know it's written, but it's not so important to find it today. It's just to tell you that we must always wait for the leading of the Holy Spirit.
और बेशक हम इस बात को जानते हैं कि खुदा का रूह जो है वो हमें अक्सर जो है वो काम करने से रोकता है.
So brother, God bless you, and I hope that you will re-listen again this preaching.
और भाइयों खुदावंद आपको बरकत दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कलाम को दोबारा से जरूर सुनेंगे.
And share with other people who maybe they have not internet. I suppose that it is always the same in Pakistan. There's a problem.
और उनके साथ भी शेयर करेंगे जिनके पास इंटरनेट जो है वो नहीं था, क्योंकि ये मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये अक्सर जो है मसला दरपेश आता है.
I ask you again to the Bible says avoid things, so avoid those who say they are pastor, those who say I am, avoid them, because we must always take care of to be together in the spirit with the elders of the local churches.
और मैं फिर से आपको इस बात के ऊपर ध्यान लगाऊं कि आप हमेशा उन लोगों को अवॉइड करें जो कहते हैं कि हम पादरियां और देखें फिर उनके अंदर ऐसी कोई भी जो है वो बात नहीं पाई जाती.
And I say this because I know what I'm talking about.
और ये मैंने इसलिए बात कही क्योंकि ये मैं जानता हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ.
So brothers, how many brothers, sisters, your five families here who are going to pray?
और अभी पांच खानदान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी हम दुआ करते हैं.
So can I ask a brother or a sister to pray?
और अगर कोई भाई या बहन जो है वो दुआ करना चाहता है तो वो जरूर करे.
Brother Danish is there?
No, brother, today is not.
And the brother,
brother Tariq.
Tariq is there?
Tariq is here.
Okay, brother Tariq, are you? Can I see you?
Yeah, brother.
God bless you.
Thank you. Hallelujah. I am submitted to dua karein.
Hallelujah.
खुदा उन तेरा शुक्र ते तारीफ तेरी हमद करते मेरे जिंदा खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जगह करे मेरे यीशु राजा उन्हें मेरे जिंदगी में बख्श दिया ताकि हम तेरी हमदोस्ताज तेरी कार कर सके मेरे जिंदा खुदा और इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते मेरे जिंदा खुदा कि तूने हमारे जिंदगी में बख्श कर दिया मेरे यीशु राजा ताकि हम इससे खुदा मंदा जा पाए मेरे यीशु राजा तेरे पीछे चलने वाले बन सके और 100 से 100 गुना फल ला सके मेरे यीशु राजा. ये जो बीज ब्रदर हमारी जिंदगी में बोझ दिए मेरे यीशु राजा हमें तौफीक बख्श दे मेरे जिंदा खुदा कि हम दूसरी जिंदगी में बो सके मेरे जिंदा खुदा. ऐ खुदा हमें तौफीक बख्श दे कि हम ये कलाम फैला सके मेरे जिंदा खुदा. तेरा के मैं करता हूँ खास तौर पर ब्रदर के मेरे यीशु राजा इन्हें खुदा सेहत बख्श दे खुदा ताकि ये कलाम हमारी जिंदगी में बख्शते जाए मेरे यीशु राजा और हम इनसे सीखते जाए मेरे यीशु राजा और आगे सिखाने वाले बन सके मेरे जिंदा खुदा. खुदा तेरा के मैं तो ब्रदर शमील को एक दाउन से मेरा जिंदा खुदा अगर दाउन छू उन्हें बरकत दे मेरा जिंदा खुदा क्योंकि तर्जमा करके मैं कलाम सुनाते हैं मेरे यीशु राजा और तेरी मुनादी करते हैं मेरे यीशु राजा तेरे कलाम को फैलाने वाले बन सके मेरे यीशु राजा. दाउन आज के कलाम खुदाउन हमारी जिंदगी को चेंज करने वाला यीशु राजा. खुदाउन जितने बहन भाई खुदा जी इस कलाम को सुने खुदा उन्हें बरकत दे मेरे यीशु राजा जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बरकत दे खुदाउन हमें शेयर करके खुदाउन हम बरकत ला सके मेरे यीशु राजा कलाम यीशु राजा ये कुछ मांगता हूँ पा लेता हूँ मीठे पे नाम के वसीला से आमीन.
हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई एम वेरी हैप्पी दैट स्लोली वी आर प्रोग्रेसिंग टू द रेस्टोरेशन ऑफ ऑल थिंग्स. इट इज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रीचिंग हियर.
और आपको बरकत दे और मैं बहुत खुश हूँ कि हम आहिस्ता जो है वो बहाली के पैगाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि यही एक मेन हमारा मकसद है.
And I'm quite sure that what we read from Zacharias there, it came from Brother Frank. I think it is him who wrote it during the preaching when I was in Germany. I always wrote the verses that he gives. So I think it came from this the life of Zacharias.
और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें से जो है वो Brother Frank की प्रीचिंग के अंदर से था जो हिजकिया के बारे में उन्होंने बताया था और मैंने उनमें से ये हवाले जो है वो नोट किए थे.
Yes, so brother, do you have a request of prayer or something or a question, something?
और अगर भाइयों आप में से किसी ने कोई दुआ करवानी है कोई दरख्वास्त है तो आप जरूर बता सकते हैं अभी.
Brother,
you can.
जरूर Brother, we have one brother, you remember, he was very sick
Yes.
Last time, and he is still in critical condition, so he is in hospital.
Uh-huh.
So kindly pray for him.
Amen. What is his name?
His name is Nadeem, and he have a problem in his liver and also by sleep. Aur kya kya masla hai bhai ko?
He's on dialysis.
Kidneys are, I think, totally expired, but a few points he have.
Amen. May the Almighty God put His hand on you, and I will ask the brother Samuel to pray. Can you pray? And I ask you, Brother Samuel, to pray for a colleague who they say is dying, you know, and so you can pray for this. Brother Samuel, can pray a moment.
Okay. I am to pray. خدا ہم نے تجھ کو گزاری کرتا ہوں ایک بار پھر سے کیونکہ تو شکر گزاری کے لائق ہے ہمارا جب جو چیز لاتا ہے ہم تیرے پاس آتے ہیں اور ہمیں وقت کی پابندی نہیں کوئی قید نہیں ہم آزاد ہیں ہم ہر لمحہ تیرے حضور میں جھکنے والے ہیں اور خدا ہم کسی معبود کے سامنے نہیں جھکتے بلکہ ہم اپنے خداوند کے سامنے جھکتے ہیں جو زندہ ہے جو سنتا ہے جو چھوتا ہے اور جو جواب دیتا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو نے ہم انسانوں کے اوپر کیا
Señor
Jesús. اسی وقت وہ یسو کے نام سے جاتی رہے اور تیرا بندہ شفا پائے اور اے خدا ہم کو تیری گواہی دے یسو کے نام سے اس کی ساری کی ساری بیماری ابھی اسی وقت اس کے
Hallelujah.
جاتی رہے ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہم نے تیرے حضور میں مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کے لیے خدا ہم تو ضرور ہماری دعا کو سنے گا اور اسے شفا دے گا اور اس کے ساتھ بدر کے کلیگ کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ مرنے کے بالکل قریب ہے تو اے خداوند ہم اس بندے کے لیے بھی تیرے حضور میں اے خداوند دعا کرتے ہیں اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے لیکن تو خدا قادر ہے قادر مطلق ہے اے خداوند اس کی ساری بیماری کو اس کے سارے مشکل کے وقت کو اس کی ساری تنگی کو یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں
Hallelujah.
یسوع کے پاک نام سے حکم دیتے ہیں ابھی اسی وقت اس کی ساری بیماری جاتی رہے اور اے خداوند صرف تو ہی ہے جو ہمیں ہر بات سے بچاتا ہے مشکل سے بچاتا ہے پریشانی سے بچاتا ہے اے خداوند یسوع کے نام سے تو ان دونوں لوگوں کو دونوں بیٹوں کو شفا دینا اور اے خداوند تو ان کے ساتھ ہو اور ان کو اپنی گواہی کے لیے اٹھا کھڑا کرو ان کو استعمال کر تمہارے ساتھ ہمارا زندہ ہوتا ہے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہماری دعا کو سن لیا ہے اے خداوند ہم پھر سے اتنے متفق ہو کر ان دونوں کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں ان کو شفا دے اور میری سلطا کو جو مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع کے نام سے
Hallelujah, Hallelujah. God bless you all. Brother, I just wanted to finish something. I told you that there were another verse. In fact, it was in the same verse. It was the same verse, the verse, the Act 16. It was in fact the same verse. But two times is written. Can you take again, and we'll finish by this, Act 16. 5, 6. So it's very strange because it's written Acts 16 and you have the fifth verse or sixth, you can six, and they went through the original three, it's what we have read, but it was written in the same verse, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Because sometimes the Bible is bit, it's not the same verses.
Yes. और छठी आयत के अंदर ही वो बात लिखी हुई थी कि उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया.
So you can imagine if someone was a fanatic, I want to go in Asia, I want to go in Asia at that time. But the Bible say it was not the time.
और आप देखें कि कुछ बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ही जुनूनी होते हैं, वो कहते हैं जी हाँ मैं तो जाने जाना, मैं तो आसिया में जाऊंगा, लेकिन बाइबल कहती है कि अभी वक्त नहीं है.
And then it's written what we have read, because it was in my Bible in French is the same verse or another verse anyway. And then they came up to Mysia, and the Spirit of Jesus did not allow them. So that's why it's very important to be led by the Holy Spirit. So pray for me that God leads me by His Spirit in this country. In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Amen. So, you can put maybe your...